एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में स्वागत। आज हम स्पैनिश लेखक कार्लोस रुइज़ ज़ाफ़ॉन के एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में जा रहे हैं जिसने मतलब दुनिया भर के पाठकों को अपना दीवाना बनाया है। ला सोम्ब्रा देल वियेंतो, यानी हवा की छाया।
हाँ, ज़ाफ़ॉन, जिनका जन्म बार्सिलोना में हुआ और जो दुर्भाग्य से 2020 में नहीं रहे, वो सर्वेंटिस के बाद स्पेनिश भाषा के शायद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक माने जाते हैं।
और उनकी खासियत भी यही है कि बार्सिलोना शहर उनकी कहानियों में सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता।
बिल्कुल नहीं, वो तो जैसे एक जीता जागता धड़कता हुआ किरदार बन जाता है।
सही कहा। और ये उपन्यास जो 2001 में आया था, ये ज़ाफ़ॉन की वो मशहूर भुला दी गई पुस्तकों का कब्रिस्तान सीरीज की पहली किताब है। हालांकि ये अपने आप में कहानी पूरी है।
हाँ बिल्कुल, पूरी कहानी है। और ये हमें ले जाती है स्पैनिश सिविल वॉर के बाद के बार्सिलोना की उन रहस्यमयी धुंध में लिपटी गलियों में।
तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इसकी कहानी, इसके जो यादगार किरदार हैं और जो गहरे संदेश हैं उन पर एक नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किताबों और पढ़ने के जादू के नाम एक खत जैसी है।
तो कहानी की शुरुआत होती है 1945 के बार्सिलोना में। एक 10 साल का लड़का है डैनियल सेम्पेरे। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो काफी उदास है। तो उसके पिता, जो पुरानी किताबों की एक दुकान चलाते हैं, वो उसे एक बहुत ही मतलब बहुत खास एक गुप्त जगह ले जाते हैं, भुला दी गई पुस्तकों का कब्रिस्तान।
ये नाम ही अपने आप में कितना कितना रहस्यमयी है, भुला दी गई पुस्तकों का कब्रिस्तान,
है ना? एक ऐसी जगह जहां वो किताबें रखी हैं जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। एक विशाल भूल भुलैया जैसा पुस्तकालय है वो।
अच्छा।
और वहां की एक परंपरा है कि जो पहली बार आता है उसे एक किताब चुननी होती है और वादा करना होता है कि वो उसे जिंदगी भर सहेजेगा, मतलब उसे गुमनाम नहीं होने देगा।
और डैनियल कौन सी किताब चुनता है?
डैनियल की नजर पड़ती है एक अनजान लेखक जूलियन कैरिक्स की किताब हवा की छाया पर, और वो उसे चुन लेता है।
और बस यहीं से डैनियल की जो शांत सी जिंदगी थी उसमें एक तूफान आ जाता है।
हाँ बिल्कुल, वो किताब उसे इतना पसंद आती है, इतना प्रभावित करती है कि वो उसके लेखक जूलियन कैरिक्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता है।
लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है शायद।
कुछ भी नहीं, उसे पता चलता है कि जूलियन कैरिक्स का जैसे कोई वजूद ही नहीं है, जैसे वो कभी था ही नहीं। और फिर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही अजीब डरावने आदमी से।
अच्छा।
हाँ, उसका चेहरा जला हुआ है और उससे जले हुए कागज की गंध आती है। वो अपना नाम बताता है लाइन कुबेर।
लाइन कुबेर, ये नाम तो।
हाँ, ये कैरिक्स की किताब के शैतानी पात्र का नाम है। और वो आदमी कहता है कि वो कैरिक्स की हर एक कॉपी को ढूंढकर जला रहा है, और शायद डैनियल के पास जो है वो आखिरी कॉपी है।
ओहो, तो यहीं से उपन्यास का जो मेन रहस्य है, जो संघर्ष है, वो शुरू होता है।
बिल्कुल।
डैनियल की वो मासूम सी जिज्ञासा अब एक जुनून बन जाती है। उसे पता लगाना है कि ये जूलियन कैरिक्स कौन था, कौन है जो उसकी सारी किताबों को, उसकी विरासत को मिटा देना चाहता है।
हाँ, अब ये सिर्फ एक किताब बचाने की बात नहीं रह जाती, ये एक खोई हुई जिंदगी, एक खोई हुई कहानी को बचाने की जंग बन जाती है।
और इस खोज में डैनियल को बार्सिलोना के अंधेरे कोनों में अतीत के सायों में उतरना पड़ता होगा।
हाँ, और इस सफर में वो कई लोगों से मिलता है, लेकिन एक शख्स है जो उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन जाता है, फर्मिन रोमेरो डी टॉरेस।
फर्मिन? हाँ, उनके बारे में तो बहुत सुना है। वो किरदार जो सड़क पर मिलता है और सेम्पेरे परिवार उसे अपनी दुकान में नौकरी दे देता है।
हाँ वही।
वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर वे है ना, वो तो जैसे कहानी की आत्मा का हिस्सा है।
बिल्कुल, फर्मिन सिर्फ मजाकिया या बातूनी नहीं है, उसके पीछे गहरा अतीत है। सिविल वॉर की यातनाएं हैं, एक जासूस होने का तजुर्बा है, वो डैनियल का दोस्त बनता है, उसका गार्डियन जैसा, और इस रहस्य को सुलझाने में उसका साथी। उसकी अपनी कहानी भी ना, वो मुक्ति और उम्मीद की कहानी है। और डैनियल और फर्मिन की जो दोस्ती है वो उस पूरे डार्क माहौल में एक गर्मजोशी, एक रोशनी लाती है।
और फिर उनकी जो ये जांच है वो उन्हें जूलियन कैरिक्स की दुखद कहानी के बिल्कुल केंद्र तक ले जाती है। एक टैलेंटेड लेखक जिसकी जिंदगी मतलब प्यार, धोखा और नुकसान से भरी हुई थी।
हाँ, उन्हें पता चलता है जूलियन के बचपन के बारे में, उसका एक अमीर एल्डाया परिवार की बेटी पेनेलोपे के साथ जो निषिद्ध प्रेम था उसके बारे में।
अच्छा, तो एक प्रोहिबिटेड लव स्टोरी।
हाँ, और ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जो बार्सिलोना के उस वक्त के जो सख्त सामाजिक बंधन थे और जो परिवारों की क्रूरता थी उसकी भेंट चढ़ गई। उनका भागने का प्लान फेल हो जाता है, पेनेलोपे को उसी के घर में कैद कर दिया जाता है। और जूलियन ये सोचकर पेरिस भाग जाता है कि पेनेलोपे ने उसे धोखा दिया है।
यहीं पे ज़ाफ़ोन का वो थीम दिखता है ना, कि अतीत का साया कैसे पीछा नहीं छोड़ता। जूलियन और पेनेलोपे की कहानी सिर्फ उनका पर्सनल दुख नहीं है,
नहीं बिल्कुल नहीं,
वो उस वक्त के समाज का, क्लास डिफरेंस का, और वो जो झूठी इज्जत के नाम पर क्रूरता होती है उसका भी आईना है।
और कहानी और भी दुखद होती जाती है। बाद में ये पता चलता है कि कैद में ही पेनेलोपे की प्रेगनेंसी में डेथ हो जाती है उसके बच्चे के साथ, और परिवार इस पूरे राज को दफना देता है।
हे भगवान।
उधर पेरिस में जूलियन का जो बेस्ट फ्रेंड था मिकेल मोलिनेर, वो जूलियन को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है।
अपनी जान कैसे?
हाँ, जब इंस्पेक्टर फ्यूमेरो जूलियन को ढूंढ रहा होता है तो मिकेल खुद को जूलियन बताकर उसकी जगह मारा जाता है। और इन सबके पीछे साये की तरह वो इंस्पेक्टर फ्यूमेरो है ही, एक बेरहम भ्रष्ट पुलिस वाला जो जूलियन से नफरत करता है और पेनेलोपे के लिए उसके मन में एक अजीब सा विकृत सा जुनून है।
ये फ्यूमेरो सिर्फ एक विलन नहीं है, मतलब वो उस दौर की जो सत्ता थी उसकी क्रूरता और पर्सनल दुश्मनी का प्रतीक बन जाता है।
हाँ बिल्कुल,
उसकी नफरत जूलियन के लिए बचपन की जलन और क्लास डिफरेंस से पैदा होती है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल नफरत जब पावर से मिल जाती है तो कितनी खतरनाक हो सकती है।
और इन सब त्रासदियों से जूलियन पूरी तरह टूट जाता है। वो बार्सिलोना लौटता है और अपनी ही लिखी किताबों को ढूंढ ढूंढ कर जलाने लगता है।
अपनी ही किताबों को?
हाँ, और वो अपने उपन्यास के शैतान लाइन कुबेर का भेष अपना लेता है। ये जैसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का चरम था।
बाप रे।
आखिरकार डैनियल का सामना इसी भूत से होता है और अंत में फुमेरो के साथ एक लड़ाई होती है जिसमें फुमेरो मारा जाता है, लेकिन वो मरने से पहले जूलियन को भी बुरी तरह घायल कर देता है और जूलियन की मौत हो जाती है।
लेकिन उसकी कहानी बच जाती है डैनियल के जरिए।
हाँ, उसकी कहानी बच जाती है।
हाँ, तो डैनियल की जो यात्रा है वो एक किताब की खोज से शुरू होती है और कहाँ पहुँचती है, एक शहर का इतिहास, प्यार, नुकसान, इंसानी क्रूरता, इन सब की गहराइयों तक।
बिल्कुल, वो मासूमियत से अनुभव तक का सफर तय करता है। उसका किरदार हमें दिखाता है कि कहानियों को जिंदा रखने के लिए कितना कितना साहस चाहिए होता है।
और जूलियन कैरिक्स, वो उपन्यास का वो दुखद हीरो है ना, एक ऐसी उपस्थिति जो पाठक को परेशान करती रहती है।
हाँ, उसकी प्रतिभा, उसका जुनून और उसका जो अंत है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जुनून की विनाशकारी शक्ति पर और आर्ट की नाजुकता पर भी। वो डैनियल के लिए एक तरह का आईना है, एक चेतावनी भी।
सही कहा। और फिर है बीट्रीज बिया एगुलर, वो सिर्फ डैनियल की लव इंटरेस्ट नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो कहानी में एक्टिव रोल निभाती है, डैनियल के साथ खतरों का सामना करती है। उनका जो प्यार है वो जूलियन और पेनेलोपे के दुखद रोमांस के सामने एक उम्मीद, एक भविष्य का प्रतीक बनकर उभरता है।
इन किरदारों के जरिए ज़ाफ़ोन कई बड़े सवाल उठाते हैं, कई अहम विषय। सबसे बड़ा तो शायद यही है, किताबों और कहानियों की अमरता का विचार।
हाँ, भुला दी गई पुस्तकों का कब्रिस्तान तो इसी का सबसे बड़ा सिंबल है कि जब तक कोई एक पढ़ने वाला भी किताब को याद रखता है तब तक लेखक की आत्मा उसमें जिंदा रहती है।
जैसे डैनियल के पिता कहते हैं ना, हर किताब में एक आत्मा होती है, उस व्यक्ति की आत्मा जिसने इसे लिखा और उनकी जिन्होंने इसे पढ़ा और इसके साथ जिया और सपना देखा।
क्या लाइन है ये, पाठक और लेखक के उस खास रिश्ते को कितनी खूबसूरती से बताती है।
बिल्कुल। और फिर है प्यार और जुनून का जो द्वंद्व है। कहानी में प्यार के कई रूप हैं, जूलियन और पेनेलोपे का वो दुखद, सब कुछ तबाह कर देने वाला प्यार,
फिर डैनियल और बिया का बचाने वाला, उम्मीद जगाने वाला प्यार, और दूसरी तरफ फुमेरो का वो अजीब सा अधिकार जताने वाला जुनून जो असल में नफरत है।
हाँ, ये दिखाता है कि प्यार जितना बना सकता है उतना ही बिगाड़ भी सकता है।
सही। और साथ ही याददाश्त और भूलने का जो संघर्ष है वो भी बहुत सेंट्रल है। जूलियन अपनी किताबें जलाकर अपना अतीत, अपनी पहचान मिटाना चाहता है।
वो लाइन कुबेर बनना भी तो उसी का हिस्सा है।
हाँ, उसी भूलने की कोशिश का। और दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान है और डैनियल का आखिर में जूलियन की कहानी लिखना, ये सब यादों को बचाने की कोशिश है। ये सवाल उठता है कि क्या याद रखा जाना चाहिए और क्या भुला देना बेहतर है।
ज़ाफ़ोन की लिखने की स्टाइल भी कमाल है। उन्होंने बार्सिलोना को जैसे दिखाया है वो शहर खुद एक कैरेक्टर बन जाता है, वो भी गॉथिक कैरेक्टर।
हाँ, वो बारिश में भीगी सड़कें, धुंध में लिपटी इमारतें, पुरानी हवेलियों के वो रहस्यमय खंडहर, ये माहौल कहानी के रहस्य और उदासी को और गहरा कर देता है। आप पढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं।
हाँ, वो माहौल लगभग छुआ जा सकता है, और उनका कहानी कहने का तरीका, वो नेस्टेड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, कहानी के अंदर कहानी।
हाँ, वो बहुत असरदार है। जैसे जैसे डैनियल सुराग जोड़ता है, अतीत की कहानी अलग अलग लोगों की जबानी टुकड़ों में सामने आती है, जैसे कोई पजल सॉल्व हो रही हो।
और सिंबल्स का भी बहुत इस्तेमाल है। कब्रिस्तान है जो कलेक्टिव मेमोरी का प्रतीक है, छाया है जो अतीत और रहस्य का प्रतीक है, आग है जो जुनून और विनाश दोनों का प्रतीक है।
हाँ, उन्होंने बड़ी खूबी से मिस्ट्री, रोमांस, हिस्टोरिकल फिक्शन और मेटाफिक्शन, मतलब किताबों के बारे में किताब, इन सबको मिला दिया है। एक बहुत ही अनोखा मिक्सचर तैयार किया है।
एक और कोट याद आ रहा है मुझे, जो पढ़ने के अनुभव पर है। किताबें दर्पण की तरह होती हैं, आप उनमें केवल वही देखते हैं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है।
वाह, ये बात पाठक की अपनी समझ और उसके अपने अनुभव की भूमिका पर कितना जोर देती है ना।
बिल्कुल, ये उपन्यास पढ़ने वालों पर एक गहरा असर छोड़ता है। जूलियन की कहानी का दुख, फर्मिन की जिंदादिली, डैनियल की हिम्मत और बार्सिलोना का वो रहस्यमय खिंचाव, ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, एक अनुभव बन जाती है।
हाँ, और ये किताबों के प्रति हमारे नजरिए को भी बदल सकती है। उन्हें सिर्फ कागज और स्याही समझने की बजाय आत्माओं का घर समझने पर मजबूर कर सकती है।
पढ़ने के बाद एक एहसास होता है जैसे आपको कोई राज सौंपा गया है, जिसे आप सहज कर रखना आपकी जिम्मेदारी है।
हाँ,
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी भूली हुई किताब या कहानी है जिसे हम बचाना चाहेंगे।
अंत में हवा की छाया शायद हमें यही याद दिलाती है कि कहानियां वो विस्मृति के खिलाफ, भूलने के खिलाफ हमारा सबसे मजबूत हथियार हैं।
और ये साहित्य के उस जातों में हमारे यकीन को फिर से ताजा करती है कि कुछ कहानियां मरती नहीं, बस नए पाठकों का इंतजार करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करती रहती हैं।
बिल्कुल।
फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।